हाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरति से। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। हा देवी काकू भर गद गदयाब्ज वाच जाचे निपत्त भुवि दंडवतोद्भटर्ति। अस्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे गणनं विधे। अंगश्यामिनी छटाभिरभितो मंदे कृतेन्दीवरं जड्डं जागदरोच संग विदध तं पट्टम्बरस्य श्री वृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायं दामो। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्ये चित्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्न वृंदे नमस्ते चरणं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। वैराग्यजुग भक्तिरसं प्रयत्नै अपायन् मानुन वेप्सुमन्दं कृपां बुधिर्जा पर दुख दुखी सनातनस्तं प्रभुं। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुखं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदूतं सर्वभूतं मुनिवां। वैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं न मां चरणं कृते। महाप्रभु जी जगत में आए थे, किस लिए आए थे? नाम प्रेम देने के लिए। और राधा भाव आस्वादन करने के। तो नाम प्रेम कैसे दिया, कैसे दिया उन्होंने? घर में रह करके दिया न? कहां कहां पैदल गए? पहले गए, सबसे पहले नगर संकीर्तन आरंभ किया और फिर गए काशी, गया पैदल, गए पैदल आए, चुपचाप गए आए होंगे ना, कैसे किस तरह से आए और गए होंगे? और इसके बाद में संन्यास लिया और भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने में गए, सारा दक्षिण भारत और वो सब पैदल जाकर के गए। और जिनसे संपर्क हुआ उन सब लोगों को अपने विचारों से प्रभावित किया फिर, और जितने घास वृक्ष लता गुल्म सबको जोर जोर से नाम सुनाते गए, अपने अनुगत कर लिए, उनसे भी पेट नहीं भरा। एक माली कहाँ कहाँ फल की बितरी बे कुथा कुथा बिलावे अकेले। इसलिए रूप सनातन दो सेनापति को भेज दिया वृंदावन में, नित्यानंद प्रभु अद्वैत श्रीवास आदि जितने थे लोग सब सेनापतियों को, बड़े बड़े सेनापतियों को बंगाल में भेज, और अपने रहे दक्षिण भारत, वो पूरी से ही दक्षिण भारत आरंभ। और सर्वत्र प्रचार किया और करवाया। निस्वार्थ रूप में केवल मात्र भगवान नाम प्रचार और प्रेम जनन, निस्वार्थ रूप में अपने खाने के लिए भी नहीं, कोई कपड़ा किसी से भी नहीं दिया, जैसे तैसे जुट जाता बॉस वैसे ही लेकर, कितना वैराग्यपूर्ण ये सब किया। हम लोगों को भी ये सब विचार करना चाहिए और अधिक से अधिक महाप्रभु के भावों को और नाम को प्रचार करने के लिए और आचरण करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों में महाप्रभु जी के ये भावनाएं सब प्रवेश करें और इसका प्रचार हो, प्रसार हो। निस्वार्थ रूप में यदि हम करेंगे तब तो प्रचार होगा, और कोई भी स्वार्थ आया तो सब वहीं पर बात बिगड़ जाएगी। सनातन गोस्वामी इत्यादि ये सब ग्रंथ नहीं लिखते, इन भावों को प्रचार नहीं किए होते तो हम लोग कुछ भी नहीं समझते। अच्छा, इन भावों को प्रचार करने के लिए हम लोगों को महाप्रभु जी की शिक्षा क्या थी, संक्षेप में कोई बतला सकता है? एक ही श्लोक में महाप्रभु जी की समस्त सारी शिक्षाएं आ जाए, ऐसा बतला सकते हैं कोई श्लोक क्या? इसमें तो कोई शिक्षा ही नहीं, ऐसा कहो जो महाप्रभु की सब शिक्षाएं। इसमें भक्ति की कोई बात नहीं, इसमें शिक्षा की बात क्या है? तीनाद अपिष्टमित हो जाएगा तो भक्ति मिल जाएगी, इसमें तो कीर्तन करने के लिए ये गुण बतला है, ये गुण है। महाप्रभु की शिक्षा है के श्लोक में बोलो, जगदीश बोलते पर ये भी नहीं, इसमें भी सब शिक्षा है। तो घोड़ा मतलब कटार घोड़ा, कटार घोड़ा होता है जानता है, बोलो तो तुम्हें बोलो तो कला चंद देखी याद आ তোমাকে याद है? आपको याद है? याद तो था, बोलो तो। তুমি বলো সুচারু, হ্যাঁ যদি এসব থা থা याद नहीं कर सकता तो मठ में किस लिए आदमी रहेगा? किस लिए? खाने के लिए तो घर भी, खाने और पहनने और रहने के लिए, इस सब के लिए नहीं, इसके लिए मत मठ। मठ है ये सब शिक्षा करके, अपने समझ करके दूसरों को भी सिखलाएंगे तब। ए केलू को छे जगन्नाथ प्रभु बोलते पारो?
হয়ে গেল, হয়ে গেল।
तबलो तो घटा घोड़ा बोलो और इसको बोलना सीखो। आम नाय प्राह, यहाँ पर कमा लगाओ, आम नाय प्राह तत्तम हरिमीह परमम, तत्तम हरिमीह परमम सर्वशक्तिम
प्रसाद।
ऐसे स्पष्ट स्पष्ट करके इसका अर्थ निकलता जाएगा। इस तरह से इसका अर्थ समझने की चेष्टा करो, स्वयं समझो, दूसरों को भी समझाओ। कल सब इस श्लोक को याद करके अच्छी तरह से झटझट करके, कोई रुके नहीं, और इस श्लोक को और इसका तात्पर्य सभी लोग बतलाए, तुम लोगों से भी पूछेंगे और बुलवाएंगे सबके सामने, कल इसको याद करके आने। आमना ये दसमूल शिक्षा है। जैसे संसार में कोई भी रोग हो तो वैद्यक शास्त्र में एक दवा है, दस औषधियों का मूल एक साथ में पीस कर और उसमें और क्या क्या देकर के ऐसा एक रसायन बनाते हैं दवा, जिसको दस मूल या दस मूला रिष्ट कहते हैं। वो जिस रोगी को दे दिया उसका सब रोग ही एकदम दूर हो जाएगा। ऐसे भाव रोग से हम लोग पीड़ित हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको भाव रोग लगा हुआ है। इस रोग को दूर करने के लिए दसमूल आरिष्ट भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, बड़े भारी वैद्य थे वो, इसमें सूता बांध करके नब्जों के ऊपर से हाथ में कलाई पर, और सूता लंबा लेकर के जहां रहते थे वहीं से देखते थे और नाड़ी समझ लेते थे। ऐसे भीषक रत्न थे भक्ति विनोद ठाकुर। और देख रहे कितने प्रकार के रोग हैं, ये भाव रोग बहुत प्रकार का, और एक ही ऐसी दवा बनाई जिसके सेवन से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते, भाव व्याधि दूर हो जाती है, पुष्टि भी हो जाती है उसी से, और उसी से सब कुछ हो जाता है। अच्छा अब हम लोग चले बृहद भागवतम। आज एक जगह कीर्तन भी है, ये किसका न जानी अभी छूट गया हमारे दरवाजे पर, किसका है चश्मा, कौन आपका है? और साल न जाने किसका है, ये कितने दिन से पड़ा हुआ, श्री सनातन गोस्वामी पास बृहद भगवतामृत कहने के बाद में कुछ रसायन दे रहे हैं। ये रसायन उन लोगों के लिए है, रोग तो दूर हो गया है, रोग चला गया है, किंतु अभी दुर्बलता है, कमजोरी बहुत है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए ये रसायन दिए हैं। इसका कुछ दिन तक सेवन करने से शरीर में पुष्टि आ जाएगी, अर्थात प्रेमा भक्ति, इसलिए रसायन दे रहे हैं। पहले रोग को दूर कर दिया, किंतु रोग को दूर करने से ही काम नहीं चलेगा जब तक उसमें पुष्टि ना हो, इसलिए रोग को तो दूर करने की चेष्टा की आगे आगे की औषधियों के द्वारा, किंतु अब रसायन दे रहे हैं जिससे कि शरीर की पुष्टि, प्रेमा भक्ति पुष्टि हो और आगे वो बढ़ सके साथ। जिनको अंततः श्रद्धा, श्रद्धा से बढ़ करके वो श्रद्धा निष्ठा रूप में परिणित हो गई और निष्ठा भी आगे बढ़ गई और उसके छोटे मोटे जितने प्रकार के अनर्थ थे वो सब भी अब दूर होने लग गए, उन लोगों के लिए ये पुष्टि कारक ये रसायन है, इसलिए इसका नाम रस अयन, रस का आश्रय अथवा रस का समुद्र, ये दोनों आश्रय। इसका यदि कोई विधिवत सेवन करे, सुना और फिर इसका चिंतन करे, ऐसा नहीं जो यहाँ सुना और यहीं पर रख दिया तो हो गया, इसी का चिंतन करके अपने भावों को जो बढ़ाए भगवान के प्रति और ऐसी ही लीलाओं का चिंतन करे। अंततः हरिनाम करते समय, हरिनाम के समय में यदि कुछ न तो मन जाएगा जरूर विषयों में, तरह तरह के संकल्प विकल्प वो करेगा ही, आप हरे कृष्ण करते रहे वो जाएगा जरूर, स्थिर नहीं रह सकता, कभी पुरानी स्मृतियों को जगाएगा मन हरिनाम करते समय, कभी इधर जाएगा, कभी कोई किसी ने कुछ कह दिया है वो दुख ही याद आएगा, और कभी कैसे क्या करें ये सब चिंता आएगा, तरह तरह के संकल्प और विकल्प में ये चित्त आएगा, उसे कुछ होने वाला नहीं, होने वाला कुछ नहीं बल्कि अनिष्ट ही होगा। इसलिए हरिनाम करते समय में यदि ये सब चिंताएं यदि हो तो भक्ति बढ़ेगी, यही उस बढ़ने का उपाय यही एकमात्र है। ये मान लिया हम हरिनाम कर रहे हैं, मन बैठा रहेगा, मन बैठा रहेगा। एक आदमी स्वप्न देखता है, क्यों देखता है, जिस चीज में उसका मन आविष्ट होता है और बार बार चिंतन उसका करता है, स्वप्न में वही चीज आती है ना? कभी कभी दो चिंताएं मिलकर के एक अजीब वस्तु को पैदा कर देती है, किसी का सर किसी का धड़, जैसा कोई माथा मुंड नहीं, ऐसी चीजों का भी चिंतन करता है और आविष्ट हो जाने के बाद में वो स्वप्न देखता है। हम लोग कथा में बैठ रहे हैं मान लो कि एक घंटा, बाकी जो 23 घंटे हैं वो हमारे कैसे बीतते हैं इस पर विचार करना चाहिए। यदि 23 घंटा भी भगवान के चिंतन में वो लग जाता है संपूर्ण रूप से तो सब समय मन उसी में लगा रहेगा, किंतु ऐसा तो होता नहीं, इसलिए 23 घंटा के ऊपर भी निर्भर करता है हमारी मनोवृत्ति। 23 घंटा में विषयों में कभी चित्त लगाते हैं, कभी हम कैसे खाएंगे पिएंगे पहनेंगे और तरह तरह के झंझट हैं समस्याएं हैं उनके सुलझाने में 23 घंटा लगे, तो मन किसकी चिंता करेगा, वो एक घंटा जो हरि कथा सुना उसमें लगेगा न कि उन चीजों में लगेगा, बल्कि बेसी आविष्ट उसी में ही होता है जिनका हम सब समय संग करते हैं 23 घंटा, तो मन उसी में जाएगा, इसलिए सोने में भी उसी की चिंता आएगी और हरिनाम करते समय उसी की चिंता आएगी। और जिन लोगों का 24 घंटा में से 23 घंटा लगा देते हैं, 23 घंटा नहीं 15 घंटा लगा दिया, अथवा केवल भोजन और शयन के अतिरिक्त इन सब चीजों में चित्त लगाया, साधु संघ में रहे, हरि कथा सुना, फिर इन शास्त्रों में मन लगा दिया, कुछ भगवत सेवा में लगाया, कोई दूसरी समस्या ही नहीं है, तो उनका मन कहाँ जाएगा, बस इसी में आएगा। इसलिए अपने मन को साधक यदि उन्नति चाहता है तो हरिनाम करते करते भी उन्हीं लीलाओं का चिंतन, वो आने की चेष्टा करेंगे, किंतु धीरे धीरे अपना वो समय भी विषयों में न गवा करके, कोई चीज अच्छी चीज संग्रह करने में चित्त को न लगा करके, सब समय भगवत लीला कथा चिंतन, उनके उपदेश, महाप्रभु की लीलाएं जो परम कारुणिक औदार्य युक्त हैं, उन सब के चिंतन में लगाए ना। महाप्रभु जी दक्षिण देश में गए और राय रामानंद जी से बातें की, क्या बातें हुई, जो जगत के जितने श्रेष्ठ भक्त हैं उन सब की नज़र उधर ही रहती है, राय रामानंद संवाद क्यों, और उसे विचार कर उसको देखेंगे, जब देखेंगे ना तो एक एक श्लोक एक एक पद के अंतर एक एक शब्द के अंतर्गत में जब गूढ़ रहस्य खोजनेंगे, मन उसमें इतना डूब जाएगा जो उसमें निकलने की फुर्सत इच्छा ही नहीं करेगी, इसलिए जब हरिनाम करेंगे तो वही चिंता है। अच्छा अभी हम लोग जो हरिनाम करते समय जो इधर उधर की चर्चाएं और बातें चिंतन कर, अच्छा उससे लाभ क्या है? कुछ लाभ जानते हैं किंतु हमारे अधीन है जो बातें नहीं आएंगी, क्यों आती हैं? इसमें हमारी भी कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए उन त्रुटियों को सुधार करके अंततः त्यागी लोग जो हैं गृहस्थ लोगों के लिए नाहित विषय में जाना आवश्यक है। हम लोगों के लिए क्या आवश्यक है? कोई चिंता नहीं, खाने के लिए मिल जाता है, सब हो जाता है, किंतु उधर चित्त क्यों जाए? किंतु नहीं होता है। इसलिए क्रमशः हम अपनी निष्ठा को रुचि में, जिसको रुचि हो उसको आसक्ति में, जिसका आसक्ति में है उसको भाव में बदलने की चेष्टा करनी चाहिए, समझना चाहिए अच्छी तरह से। यहाँ पर इन कथाओं को, लीलाओं को श्रवण करने से तरह तरह के स्टेजों में, स्तरों में तरह तरह की शिक्षा है। एक ही प्रकार के जिनको श्रद्धा है वो एक तरह से समझेगा, जिसको निष्ठा है वो एक तरह से समझेगा, जिसको आसक्ति हो वो एक तरह से समझेगा, जिसको भाव हुआ वो एक तरह से। प्रेम वाले की बात नहीं, प्रेम वाले तो बहुत ऊंचे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, पहले उन्होंने बतलाया वन लता सर्व आत्मनि विष्णु व्यंग्य, गोपियां कह रहे हैं जितने पेड़ पौधे लताएं ये सब हैं, मानो कृष्ण को ही व्यक्त कर रही हैं, अपने हाव से, भाव से, उद्दीपना से, कथा से, मुख के विचार से, सब प्रकार से ये कृष्ण को ही व्यंजित कर रही हैं। साधक भी ऐसा हो, साधक को ही ऐसा होना चाहिए, इसी के लिए चेष्टा करनी चाहिए। यदि इतना हो जाता तो तब साधन हो गया, सुंदर साधन। कहते कि यहाँ की तो बात छोड़ो, ब्रज की गोपियां कह रही हैं परस्पर मिलित होकर के, ये अभी भौरों की बात कही, ये कीट है ना छोटे छोटे, ये कृष्ण की मधुर बंसी, कृष्ण जी कह रहे हैं पीछे पहले के श्लोक, ये श्लोक में, ये छोटे छोटे काले काले कीड़े आपको छोड़ते नहीं हैं, ये क्या करते हैं, आपकी वनमाला पर बैठ जाते हैं, कभी फूलों पर बैठते हैं, आप जिधर चलते हैं उधर ही आपकी स्तुति करते हुए चल रहे हैं, भन भन कर रहे हैं ना, आपकी स्तुति करते हुए चल रहे हैं। इन लोगों की तो बात क्या, आपकी बंसी के नाद में, स्वर में ऐसी कुछ मधु है जिसे ये भौरे नहीं छोड़ते। इन भौरों से तो देखो उन्नत, जो इनसे उन्नत है कौन, जो आकाश में उड़ने वाले कुछ पक्षी होते हैं, कुछ जलचर होते हैं, कुछ स्थलचर होते हैं, कोयल, मयूर, पपीहा, सू, कबूतर, ये सब चीजें हैं
स्थलचर,
ये स्थलचर है। सारस, हंस, जर कारंडव, जो डुबकी मारते हैं ना उतर जाते हैं, ये सब। और कितनी असंख्य चिड़ियां हैं जो जल जल में रहती हैं, सरस सारस हंस विहंगा चारु गीत हित चेतस चित्य हरि मुपासते जत चित्ता हंत मिलित दृशो धित मौना, ये जुगल गीत का ये श्लोक गोपियां कह रही हैं। उन भौरों की तो बात छोड़ो, उनसे कुछ बुद्धिमान और कुछ विवेक वाले जो जलचर हैं उनकी बात सुन, क्या हो जाती है स्थिति। हरिमोपास ते जत चित्त, कृष्ण जब ही वन में पहुंचते हैं क्या आश्चर्य की बात है, हंत हंत माने हाय हाय, अथवा क्या विषाद में भी हो सकता है, अत्यंत हर्ष में भी, विस्मय में भी हो सकता है, अत्यंत विस्मित होकर के पशु पक्षियों की तरफ में देख करके तक, अरे गोपियों उनकी हिरणियों और सब की तो बात क्या, ये भौरों की बात कही, अब देखो ना इनकी बात, ये हंस सरसी, सरसी माने सरोवर में, सरोवर के जो सारस हंस बिहंगा, असभ्य पक्षी हैं जो उसमें विचरण करते हैं, चार चार द्वीप हित चेतस एत्त, एत्त माने लाकर अपने हृदय में धारण करके कानों के माध्यमों से कृष्ण की चारु गीत, बंसी चारु गीत, मूर्छना इत्यादि स्वरों से युक्त जिनकी जो बंसी गीत है उसको सुन करके अत्यंत मुग्ध हो जाते हैं। और दूसरे किनारे छोरे छोर पर रहने वाले एकदम कृष्ण के निकट आ जाते हैं। ये तो आदमियों को देख करके डरते हैं, आदमी को देख करके भागने आएंगे, किंतु कृष्ण की इस बंसी ध्वनि को सुन करके मुग्ध हो गए। और हरिम उपासक तेजत चित्त, हरिम उपासक माने हरि की उपासना कर, उपासना माने उपासन अर्थात शरीर से, वाणी से, तन से, मन से, वचन से, हृदय से, जब एक समान आसन पर होंगे तो समासन कहा जाता है ना, उपासना कही जाती है। जब जीव जब तक बद्ध है तब तक उपासना नहीं है, उपासना के लिए केवल प्रचेष्टा है ना, भगवान के निकट नहीं आता। ठाकुर घर में हमने आसन बिछा दिया, ठाकुर जी का आसन जैसा है उसी के पास में समासन कर दिया, किंतु समासन है कहां, ठाकुर जी और कहां हम, एक समाना हम बद्ध जी और वो विभु व्यापक वस्तु सच्चिदानंद घन है, इसलिए अभी आसन समीप नहीं हुआ। जिस समय हमारी चित्त वृत्ति वैसे हो जाएगी, एक जैसी चित्त वृत्ति, और हमारी आत्मा या मन जब उनके समान आसन के समान निकट हो करके उप आसन निकट में हो जाए, एक जाति हो जाएगा तब। न देवम देवम अर्चयेत, जब तक ही अदेव हम लोग हैं, बद्ध जीव हैं, अनर्थों से ग्रस्त हैं, तब तक हम उनकी अर्चना नहीं कर सकते। इसलिए देवम भूत्वा देवम अर्चय, देवता होकर के तब उनकी उपासना, उनके निकट जाओ, चित्त वृत्ति को ऐसा बनाओ तब तो उपासना होगी, अन्यथा उपासना नहीं होती। अभी जा रहे ठीक है, इसलिए वह उपासना निकट आसन लाना चित्त वृत्ति के द्वारा भी, इसका नाम है उपासना। उपास वो निकट आ गए, जितनी चिड़िया थी हंस सारस कारंडव इत्यादि इधर उधर बहुत दूर, वो एकदम निकट में आ गए कृष्ण के निकट। और जतचित्ता, जतचित्ता माने संयत चित्त हो गई, कैसे संयत चित्त, अभी हम लोगों का चित्त संयम नहीं है, संयत नहीं है, सम दम प्रतीक्षा आर्जव इत्यादि अथवा यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ध्वानुस्मृति तब समाधि, तब समाधि और तब हो गई उपासना। अभी तो यम नियम ही हमारे नहीं है, जिस समय यम नियम होगा तो चित्त एकाग्र हो जाएगा। तो यत चित्ता माने संयत चित्ता, चित्त को संयम कर लिया, वहां पर बंसी बजी, कृष्ण का रूप देखा, चित्त संयम हो गया, ऐसे नहीं हो गया। और इसके द्वारा तीन लक्षण इसमें बतलाए, जत चित्ता माने संयत चित्ता, मिलित दृशो और धृत मौना, तीन लक्षण हैं साधुओं के, मौन धारण कर लिया, ये जितने पक्षी थे कल 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 कलरव जो कर रहे थे चुप हो गए। वाणी समस्त दोषों की कागार, जितनी जो कुछ भी चित्त चंचल करने का होने का कारण होता है ये होता है जिह्वा के द्वारा। थोड़ी सी उलट फेर करके कह दे कुछ, बस मन खराब हो जाता है, चित्त चंचल हो जाता है। यदि किसी की वाणी संयम हो गई तो कोई वैष्णव अपराध अथवा गुरु अपराध, गुरु अवज्ञा इत्यादि नहीं होगा। जो कुछ होता है ना झगड़ा लड़ाई मार पीट जो कुछ, ये वाणी कराती है। इसलिए हम लोगों में सबसे पहले उपदेशामृत में बाको बेगम, इसलिए कहा कि धृत मौना बड़ी तेज है, लबार है जीवा, मौन हम धारण कर, इसलिए वो लोग मौन हो गए। शास्त्रों में भागवत इत्यादि में या हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों में हंसों का कलरव राधारानी जी के नूपुर बजने के साथ में दिया गया है। अनेक मंत्र नाद मंजू नूपुरा वलस खलप, ये जो नाद करते हैं कलकल ना, देखो तो भाई ये कलकल ध्वनि क्या हो रही है, ये हंस सारस ये जो बोल रहे हैं ना कलकल कलकल, तो मधुमंगल कहते हैं अरे नहीं सखा, ये उनके नूपुर बजते हुए आ रहे हैं, वो हंस नहीं कर रहे। अथवा उल्टा उसका उदाहरण ले लो, ये नूपुर नहीं है सखा, तुम उसके फेर में पड़ रहे हो, तुम्हारी तो वही चिंता है ना, इसलिए तुम लोग समझ रहे हो ये वो नूपुर की ध्वनि है, भूल जाओ। ये तो ये देख रहा है ना, ये हंस सारस यहाँ पर बोल रहे हैं, ये दोनों आप। तो इसलिए धृत मौना, यदि भजन करना चाहते हो तो मौन साधन करो, कृष्ण नाम का अतिरिक्त, कृष्ण कथा का अतिरिक्त और कोई बात मत बोलो, बस तब तो साधन भजन होगा। और नहीं तो दिन रात झिंगुर देखा है, झिंगुर झिंगुर होता है ना, जहां थोड़ा सा वर्षा होने दो थोड़ी सी, और रात भर दिन भर लगाए रहेंगे सो। कोकिल देखती है कि अब ये झिंगुर बोल रहे हैं, मुझे चुप होना ही अच्छा है, तो कोकिल भी उस समय अपना बोलना छोड़ देती है झिंगुर के शब्द के मारे। तो इसलिए भी तमंगना मौन साधन करो, कृष्ण कथा के अतिरिक्त, कृष्ण नाम के अतिरिक्त कुछ मत बोलो। तो ये चुपचाप हो गए, पहला नंबर ये। आप मिलित दृशो, आंख बंद कर दिया, कृष्ण को देख लिया ना, और देख करके क्या किया, आंख बंद किया, माने क्या, आंख के माध्यम से कृष्ण को अपने हृदय में ले लिया, और अब संसार की कोई चीज देखने की स्पृहा ही नहीं रही, ये हो गया दूसरा मिलित दृश्य। और जत चित्ता, अब जब मौन हो गया और आंख भी बंद कर दी और दूसरे सेंस को दूर कर दिया, तो अपने आप चित्त संयम हो गया। चित्त संयम कब होगा, यदि वाणी संयमित हुई और आंख का ये हुआ, स्पर्श का ये सब बंद हो गया, तब होगा। खूब देख रहे हैं इधर, ऐसे देख रहे हैं चारों तरफ, चित्त संयत होगा ना, क्या होगा, और बढ़ जाएगा देखने से। ऊपर से नहीं बोलने से क्या होता है, भीतर भीतर चित्त चंचल हो जाएगा। इसलिए बिल्ल मंगल ने इन दोनों को सजा दे दी, घुसे दिया, अब नहीं देखेंगे ना, और मौन हो गए, केवल कृष्ण कथा, तब चित्त अपने आप संयत हो जाएगा। इसलिए गोपियां कह रही हैं, अहो बड़े आश्चर्य की बात, दिन रात ये ध्वनि करने वाले बोलने वाले अगड़म बगड़म, और आज ये धृत मौन हो गए और आंखों को बंद कर दिया, कृष्ण को अपने हृदय में ले लिया, कोई अब अभिलाषा नहीं रह गई जगत की, और इनका चित्त अपने आप संयत हो गया। यदि भजन करना है तो ऐसे करना, ये निम्न अधिकारी में भी, उत्तम मध्यम सब अधिकारियों के लिए ये है। जैसा चित्त उसका उन्नत होते जाएगा वैसा ही ये होता जाएगा। ओहो, हम तो ऐसे नहीं हो सके, दिन रात चित्त विक्षिप्त रहता है, आंखों को भी बंद करके नहीं रख सकते, क्यों? ये कृष्ण के लिए, कृष्ण को खोज कर रहे हैं, इधर तो नहीं गए, इधर तो नहीं गए। और देखो हम लोग सब समय बोलती हैं, मौन भी नहीं रख सकते। इन लोगों को जैसे कृष्ण के निकट आ गए और कृष्ण को दर्शन करने का सुयोग मिला, हम लोगों को इतना भी सुयोग नहीं कि कृष्ण के निकट जा सकें, कृष्ण को देख सकें, और ऐसी हमारी स्थिति हो जाए। जहाँ कहीं भी ऐसा गंध देखती हैं गोपियाँ, या कोई उत्तम अधिकारी देखता है ना, तो वो उसी में चिंतन करने लगता है, हाँ, ये हमसे कोटि गुण उन्नत है। एक आदमी बहुत अपनी पत्नी पर या अपने बच्चों पर आसक्त है, बहुत आसक्त है, साधक जो उत्तम कोटि का होगा या मध्यम देखेगा, यह है मैं इसके समान नहीं बन सका, ये तुच्छ विषय में जिस प्रकार से एकदम इसमें चित्त को लगा दिया है, मैं जानबूझ करके भी कृष्ण को अच्छा समझ, कृष्ण में हमारा चित्त ऐसा नहीं लगता है, मुझे धिक्कार है, लाख बार धिक्कार है। एक अत्यंत विषयी लोलू आसक्त चित्त एक बनिए को देखा, या किसी आदमी को देखा, विषयी को देखा, रुपये के प्रति बड़ी आसक्ति है, वो कहता देखो कितना सौभाग्यवान, इसकी एक आसक्ति उसमें, हमारी आसक्ति ऐसे भगवान में नहीं हुई। सब चीजों से वो शिक्षा लेता है। इस तरह से यहां भी इसका सनातन गोस्वामी एक और कर रहे हैं। देखो तो कृष्ण के बंसी से ये लोग आकृष्ट होकर के उपासक निकट आए, किंतु क्या अब किन सब में लगा दो, जत संजत चित्ता मिलित दृशो धृतम औना, आकर के कल कल कुछ कुछ कर कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं धीरे धीरे। और करें ये क्या मौनी हो गए कृष्ण के निकट आने से, बंसी की सुनने से? नहीं, और ये सब समय कृष्ण 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 करने लग गए। और मिलित दृश्यो, यद्यपि उन्होंने आंखों को बंद कर दिया तो इनका चित्त संजत हो गया ना, चित्त में लहर उठने लगी कृष्ण से मिलने की। हम लोग कृष्ण के निकट जाती हैं, कुछ बात कृष्ण ने कहा, आपका स्वागत है, आप लोग पधारे हैं, अच्छा अब यहाँ का दृश्य देख लिया, आप लोग भर करो, अच्छा गोपियां कोई उत्तर नहीं दे रही है, चुपचाप खड़ी हैं, संजत चित्त है ना, कोई कोई गोई आंखों को भी बंद कर दिया, चित्त उनका शांत है न कि और कितने प्रकार की हाँ में उनके हृदय में आकर के उसको उड़ा मान भिड़ोलन कर रही है, उथल पुथल कर रही है, क्या क्या चिंता कर रही है, हजार लाख प्रकार के चिंता। ये कहते हैं कि यदि कृष्ण के समीप कोई जाए तो धृत मौना रहने से भी वो मौन धारण कर लेगा, तब तो सब समय कृष्ण कथा और कृष्ण नाम करता रहेगा और आंख बंद कर सकेगा, बंसी कहाँ से आ रही उसको देखने की चेष्टा करेगा, और संजत चित्त क्या हो सकेगा, उस और भी उसका चित्त चंचल हो जाएगा। किंतु हम लोगों का दुर्भाग्य, हम उनके निकट नहीं जा सकते न हमारे ऐसे भाव आते हैं। प्रायो बतांग बिहगा मुने ये विनस्मिन, मुनयो बिहगा बनेस्मिन कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुवीतं आरुज्य जे दुर्भुजान रुचिर प्रवालन श्रृणवंती मिलित दृशो विगतान्य बात। और एक दूसरा श्लोक उपस्थित कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। वो कृष्ण कैसे सुंदर और मधुर है, पहले इस श्लोक में वर्णन किया। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण यो कर्ण कार। और इसके बाद वाले श्लोक में दोनों भाई मानो नटवर देश के रूप में सजे हुए मानो रंगस्थली में आकर के नाच रहे हैं और वन की पत्तियों से सुसज्जित हैं। कनेर का फूल यहाँ पर रख रखा है, मृग शावक की भांति उछल कूद रहे हैं मानो नट नट माने वो जो रंगस्थली में जबकि कोई नाट्य अभिनय होता है रास जैसे, तो वहां पर दो आते हैं नट और नटी, कृष्ण और कोई एक नटी, और आकर के सुंदर रूप से नृत्य करते हैं। हमने एक बार देखा वृंदावन में बन महाराज जी के यहाँ विदेशी सब लोग आए थे उनको दिखलाने के लिए, तो वृंदावन में सबसे छठे हुए कृष्ण का पाठ करने वाला और राधा जी का पाठ सबसे अच्छा करने वाला, सबको सबसे अच्छे अच्छे कुछ लोगों को वो ले आए थे। दो तीन लीलाएं उन्होंने की किंतु ऐसा कोई नहीं होगा जो रो नहीं दिया। तो पहले एक नट और एक नट, इतना सुंदर सजा हुआ, इतना सुंदर दोनों थे। और जब वो नृत्य करने लगे अंततः तो उठक बैठक ना 50 एक एक सौ उठक बैठक ऐसा जल्दी जल्दी के पहलवान लोग भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर नृत्य किया है कि सब लोगों को मुग्ध कर दिया जी भारतीय कला क्या है। और उसके बाद ही वो लीला दिखाई कि राधा जी बैठी हैं कृष्ण को चिट्ठी लिख रही हैं, प्रेम की पाती लिख रही हैं। फूल मंगाए लाल लाल और उसको रस बनाया, एक दोना बनाया उसमें रख दिया, मोर के पंख ले लिए या वो लिया कली जो होती है ना अनार की कली, अभी एकदम कली है नोकीला उसमें लगा हुआ, उसको ले लिया कोमल से उसमें डुबाया और लिख रही है। केले का पत्ता लिया पत्ता और उसी पर लिख रही है। लिखेंगे राधा होकर के कृष्ण के पास में पत्र, और पहले संबोधन करेगी ना कृष्ण, क के लिए फुटकी लगाई, फुटकी माने बिंदी जब उसे बढ़ा करके वहीं पर रखा और वहीं पर क्या लिख रही है बस चिंतन करते 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 तन्मयी हो गई। घंटों लग गए तन्मय में, अब तब राधा बन गई और राधा होकर के तब वो कृष्ण बन गई चिंतन करते करते, और कृष्ण हो करके फिर वो जो था ना बिंदी से उसको ऐसे क करती तो क के बदले वो र लिखने लगी, तो वो अभी बूंदी लिखते 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 सारी रात बीत गई और विरह में भर करके बस आंखों से आंसुओं से वो तर हो गया। तो उसको काजल उसमें लगे हुए हैं अश्रुबंदों में, और वो ये दिया है रंग थोड़ा सा भी फुटकी, बस उसी को ललिता जी ने लपेट दिया, लपेट करके और सुंदर किसी पीले सूत्र से धागा माने वही मृणाल के धागे से कमल के उससे उसे बांध करके और दे दिया कुंडलता को, जैसे ये कृष्ण को दे देना, सबको रुला दिया। तो प्राय बतांग बुहेगा मुने बनस्मिन कृष्ण क्षितं तदुतं कल्पयेनुवीतं आरुजिये दुर्भुजान रुचिर प्रमाणं मिलित श्रीणवंत मिलितो दृशो विगतान्न वाचक। वो जो विगतान्न वाचक जो पहले जो अभी बतलाया अभी मौन मिलित मौन स्थित मौन उसको यहाँ पर भी ले देते हैं, और विगतान्य वाच उसमें भी बतलाया, और तीन बतलाए संयत चित्त आंख बंद कर देना और बात वाणी से रहित हो जाना। अब तीनों को इस श्लोक में भी ला रहे हैं एकदम उदाहरण के साथ में कैसे इसी के लिए रहे कृष्ण मधुर रूप में बंसी बजाया। बजाने से पहले से वहां पर मोर एकदम इकट्ठे हो गए। पहले थे कदम के वृक्षों में और पर्वत के शिखर में थे। बस झट उड़ करके कृष्ण को देखा, बंसी सुना और बस झट कृष्ण के निकट आ गए। सानु प्रदेश में, पहले एक दिन श्लोक में आता बताया, सानु प्रदेश वृंदावनम सखी भोग इतने कृति से श्लोक, तो वो नीचे आए। इतने में जितने सुख पक्षी, सारस कोयल जो कुछ भी थे, सब लोग एकदम निकट आ गए और देखा कृष्ण मधुर बंसी मोहन बंसी बजा रहे हैं और मयूर नृत्य कर रहे हैं। उसमें गोपिया भाव नेत्र से देख करके करी, अहो प्रायो बताम हे बताम वत खेद में या आश्चर्य में, और अम्ब हे माँ जसोदे, ये होगा यहाँ माँ जसोदा के सामने ये सब भाव कहे होंगे, ये वो तो भाव रहेगा अभी तो बंद हो जाएगा। वात्सल्य और मधुर दोनों में शत्रु भाव है, एक साथ में नहीं रहेंगे, छिप करके रहेंगे। बल्कि वात्सल्य उसकी पुष्टि करेगा छिप कर, या मधुर रस भी उसे छिप करके अपनी पुष्टि करेगा। तो यहाँ पर अम्ब शब्द का अर्थ सनातन गोस्वामी जी टीका में इसमें कह रहे हैं,